टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड वर्ड प्रोसेसिंग. ये हमारे सेकेंडरी लेवल में एनरोल्ड लर्नर्स के लिए है. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल जो भी बिगनर्स होते हैं जो कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो वो भी इस टॉपिक को सुन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करेंगे. सब कंप्यूटर तो बेसिकली आज हम दो दो तीन तीन साल के बच्चों को भी टैब्स और मोबाइल फ़ोन्स ऑपरेट करते हुए देखते हैं. तो जो कंप्यूटर है, मोबाइल भी एक तरीके से मिनी कंप्यूटर भी है, लेकिन आज हर फील्ड में कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप उसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते हैं लाइफ को. तो सब पीस में बताइए कि कंप्यूटर के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए.
लिसनर्स, जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर अगर आप देखें हर जगह आपके लाइफ में आप उससे इंटरेक्ट होते हैं
जी.
अगर आप मोबाइल की बात करें, जैसे आपने कहा कि मोबाइल से भी हर बच्चे, हर टैबलेट से हर बच्चा जो है इंटरेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर से ही इंटरेक्ट हो रहा है. क्योंकि जो भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें मोबाइल का, वो कंप्यूटर का भी रहता है. जैसे नॉर्मली अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं और एक कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हैं तो हमारे माइंड में रहता है कि उसका हार्डवेयर जो है कैसा हो. तो उस हार्डवेयर के माया जब हम सोचते हैं कि हार्डवेयर में तो उसका मेमोरी आती है, फिर उसका प्रोसेसर आता है, स्टोरेज आता है, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं जब हम एक कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हैं. सेम चीज़ हमारे माइंड में रहती है जब हम मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं कि हमारे मोबाइल का जो है वो डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, उसमें रैम कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होनी चाहिए, स्टोरेज कैसा होना चाहिए. जब हम कहते हैं कि 64 GB जो है इसका स्टोरेज है, 8 GB रैम है. और कई बार आपको, अगर आप करंट सिनेरियो में देखें, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके मोबाइल का जो रैम है वो आपके कंप्यूटर के रैम से कहीं ज़्यादा चल रहा है. हम 4 GB रैम, 8 GB की बात करते हैं, और उस वैसे ही हमारे जो है मोबाइल के भी रैम आते हैं 8 GB, आपके 4 GB नॉर्मली सबके पास रहते हैं. क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि यूजेस के हिसाब से आपके कंप्यूटर्स की जो है डिमांड काफ़ी बढ़ गई है. और आजकल लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के कंपैरिजन में अगर देखें तो लैपटॉप, नोटबुक और टैब और मोबाइल ही यूज़ करते हैं. इवन किसी को ईमेल करना है तो अगर आप उससे कहेंगे आप जाइए और डेस्कटॉप से ईमेल कीजिए, तो वो उसके लिए काफ़ी जो है टफ टास्क होगा. वो इसे वो क्या ऑप्शन चूज़ करेगा, वो अपना मोबाइल उठाएगा, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन करेगा और वहीं से अपना मोबाइल जो है मोबाइल का यूज़ करके ईमेल ड्राफ्ट करेगा और ईमेल सेंड कर देगा. तो अगर हम देखें लिसनर्स, तो हम हर जगह कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो रहे हैं
जी.
तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इसके बेसिक्स के बारे थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एग्जैक्टली है क्या. जब हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की बात करते हैं
जी.
अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या मीनिंग है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ऐसा है कि एक हार्डवेयर तभी आप उससे इंटरेक्ट हो सकते हैं जब उसमें एक सॉफ्टवेयर हो जो उस हार्डवेयर को मैनेज कर सके. जैसे हमारा सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, दैट इज़ रिसोर्स मैनेजर, और सो मेमोरी मैनेजर भी उसको कहते हैं. और वही आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सके. जैसे आपने मार्केट में गए और मार्केट में आपको कंप्यूटर परचेस करना है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कितना इम्पॉर्टेंट है दोनों टर्म, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
जी.
अब मार्केट में आप गए और कंप्यूटर आपको परचेस करना है, आपके माइंड में था कि हम 4 GB रैम लेंगे और आपका जो है 1 TB स्टोरेज होना चाहिए, और फिर ये था कि प्रोसेसर भी लेटेस्ट i7 तक होना चाहिए. तो इस सब के साथ आप मार्केट में गए. जब आप शॉप पे पहुंचते हैं तो शॉपकीपर आपसे कहता है कि आप जो है कंप्यूटर, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन बताया इसकी कॉस्ट जो है 40,000 है. आप 40,000 में आप मुझसे कंप्यूटर ले सकते हैं
जी,
लेकिन आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुझसे परचेस करना होगा. तब आपके माइंड में आता है कि अब जो है हमने तो कंप्यूटर परचेस करने आए थे. उसने कंप्यूटर आपके माइंड में ये था कि जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं किसी साइबर कैफे में, किसी अपने फ्रेंड का या किसी ऑफिस का, तो आपके माइंड में ये रहता है कि आपको वैसे ही कंप्यूटर मिलेगा. तो एडिशनल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के चार्जेस जो है आपको पे करने होते हैं. आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे आजकल देखें माइक्रोसॉफ्ट का जो है विंडोज़ 10 इनबिल्ट करके आता है, लेकिन उसका पैसा उसमें इंक्लूडेड रहता है. अगर आप उनसे कहें कि हमें बेयर कंप्यूटर चाहिए तो आप देखेंगे आपको 3-4,000 आपका रिड्यूस हो जाता है. तो इसका मतलब ये कि जब भी आपको कंप्यूटर यूज़ करना है तो आपको हार्डवेयर और उसके साथ एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो उस कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर सके और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि यूज़र उससे इंटरेक्ट हो सके. तो एक ऐसी भी डिफिनीशन हम देते हैं कि, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं वो एक इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, ये भी हम देते हैं। तो जब भी आप सॉफ्टकीपर आपसे कहेगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे परचेस करना होगा तभी आप इंटरफेस करके, क्योंकि वो एक इंटरफेस इंटरमीडिएट पार्ट है, अगर आप वो नहीं एग्जिस्ट करेगा तो आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट ही नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस नहीं करते हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की वो ले करके आप जो है कंप्यूटर घर पे आते हैं तो आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। जब भी आप उसको पावर सप्लाई करेंगे तो एक ब्लैक स्क्रीन आएगी और उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो ब्लैक स्क्रीन में एक सेटिंग का रहता है, एक बूटिंग डिवाइस से इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है जो रोम में एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अब परचेस करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा आपको 4 to 10,000 लोग जो है स्पेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। तो अगर बहुत हाईली प्रोफेशनल है तो उस हिसाब से वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कई ऐसे हैं जो फ्री वर्जन मिलते हैं, जैसे हम उबुंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर लें और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल करें, या इंस्टॉलेशन के चार्जेस हार्डली जो है 500 रुपीज़ होते हैं। इवन अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाउनलोड कर रखा है तो कोई 300 में भी कर देगा। तो इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग 4 to 10,000 rupees ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू हैव ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर द 300 to 500 rupees एंड यू कैन गेट द सेम फैसिलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द सॉफ्टकीपर। तो अब इसमें है कि फिर आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज है तब आप क्या कहेंगे, तब शॉपकीपर को आप स्टॉप करेंगे कि नहीं नहीं आप मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम मत दो, आप मुझे बेयर कंप्यूटर दो, सिर्फ हार्डवेयर जो मैं मांग रहा हूँ पूरा वही असेंबल के साथ, या फिर आपके पास कस्टमाइज्ड है तो किसी कंपनी का है वो आप मुझे दे दो, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो वो 40,000 प्लस एडिशनल अगर आप 5,000 देखेंगे, मतलब 45,000 जहाँ एक यूज़र स्पेंड करने वाला था अब उसको खर्च करना पड़ रहा है सिर्फ 40,000 प्लस 300 to 500 rupees, इसका मतलब 40,500 मान लीजिए, तो उसने करीब 4,500-5,000 rupees अपने बचा लिए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है
जी।
अब जब आप कंप्यूटर परचेस करने जाते हैं तो आपको सॉफ्टकीपर ऑफर करता है कि नाउडेज आपको प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए, तो वो एडिशनल आपको चीज़ें बेचने की सेल करने की सोचता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पे देखिए कितने प्रिंट आप निकालते हैं, कितना स्कैन चाहिए डॉक्यूमेंट्स करते हैं। अगर आप साल भर में केवल 2-3 पेज जो है स्कैन करते हैं तो आपको स्कैनर प्रिंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये तो बेसिक्स हो गया कि कैसे आप कंप्यूटर को परचेस करें, कितना सेलेक्टिवली आप डिसीजन लें ताकि आप अपने पैसे को बचा सकें। अब ये बात आती है कि जो कंप्यूटर है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। तो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या कंप्यूटर दिखता है, जब भी आप किसी ऑफिस या अपने फ्रेंड के पास जाते हैं या साइबर कैफ़े में जाते हैं तो आपको एक बेसिक चीज़ दिखती है, एक मॉनिटर दिखता है जिस पे चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, उसके बाद एक कीबोर्ड दिखता है, माउस दिखता है जिसको आप यूज़ करके इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, और उसके बाद आपको एक सीपीयू दिखता है। तो सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, यही 3-4 चीज़ें आपको दिखती हैं तो आपको लगता है कि ये कंप्लीट कंप्यूटर हो जाता है। तो बेसिकली हम जो है कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो डिस्प्ले का पार्ट है जिसको कह सकते हैं आउटपुट पार्ट, आउटपुट डिवाइस। एक इनपुट का है कीबोर्ड और माउस जिसके थ्रू आप जो है इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, और एक जो है सीपीयू है, सीपीयू केस है जिसमें प्रोसेसिंग हो रहा है। जो भी आपकी अगर आप देखें कनेक्शन तो कीबोर्ड और माउस के वायर सीपीयू से कनेक्ट होते हैं और फिर सीपीयू से एक वायर मॉनिटर से कनेक्ट होता है। मतलब डायरेक्टली आपका कीबोर्ड या माउस मॉनिटर से कनेक्टेड नहीं है, वो किससे कनेक्टेड है, सीपीयू केस से कनेक्टेड है। उसको मैं सीपीयू केस इसलिए कहूँगा क्योंकि एग्जैक्ट सीपीयू वर्ड दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर को कहते हैं, बाकी टोटल उसको सीपीयू केस कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मदरबोर्ड रहता है, आपकी पावर यूनिट रहती है, हार्ड डिस्क रहता है, सीडी डीवीडी रोम के स्लॉट्स रहते हैं, फ्लॉपी के भी स्लॉट्स रहते हैं जो कि अभी आजकल यूज़ नहीं होते। तो सीपीयू केस से कनेक्शन क्या है, कीबोर्ड एंड माउस का है। उसके बाद सीपीयू में एक अलग पोर्ट है जिससे मॉनिटर कनेक्टेड है, और इन सबको पावर सप्लाई जो है सीपीयू केस के थ्रू मिल रही है। सीपीयू आप देखेंगे तो कीबोर्ड को भी अगर एक्सटर्नल 2 अगर पिन के साथ है तो भी उसको सीपीयू से ही पावर सप्लाई मिलेगी साथ में, और उसके लिए SMPS रहता है। तो आप ये इसे मान सकते हैं कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन सीपीयू में भेज रहे हैं, सीपीयू उस इन्फॉर्मेशन को कुछ इवेल्युएट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, फिर वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहा है। तो 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन 3 पार्ट को अब थोड़ा सा और एलिबोरेट करते हैं। जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जब हम कहते हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमने नाम लिया, जैसे मदरबोर्ड है, SMPS है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम उसमें i7 जब आप परचेस करने गए थे और मैंने आपसे कहा था कि i7 प्रोसेसर होना चाहिए, 8GB रैम, 4GB रैम होने चाहिए, जब ये आपके माइंड में था तो इसका मतलब है कि आप जो है उसकी बात कर रहे हैं जो एग्जैक्टली प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो आपके मदरबोर्ड पे एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे आपको एक आपको दिखेगा PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसपे आपको जो है प्रोसेसर भी होगा और स्लॉट्स होंगे रैम के, और बहुत सारे इंटरनली कनेक्टेड जो है सर्किट्स होंगे, जिसको आपको समझने उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि उसमें एक CPU होना चाहिए, प्रोसेसर, और प्रोसेसर जो है काफ़ी लेटेस्ट होना चाहिए। अब प्रोसेसर लेटेस्ट होने की क्या मीनिंग है, जब हम कहते हैं कि i7 जो है 64-bit प्रोसेसर है, तो अगर आपको आप देखेंगे कंप्यूटर हमेशा कहीं भी आपने किसी से भी सुना होगा कंप्यूटर हमेशा 2-bit पे वर्क करता है, 0 and 1
जी।
तो 0 and 1 वर्क करता है, तो इट्स मीन कि इसके अलावा वो कोई कुछ चीज़ें समझ नहीं सकता, जो भी चीज़ें उसे आप दोगे वो उसको कन्वर्ट कर लेगा 0 and 1 में, और फिर उसको वो अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। तो 0 and 1 की मीनिंग क्या है कि जब आप किसी को पावर सप्लाई देते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक आपका बल्ब है, आपने उसको पावर सप्लाई दिया, तो वो भी 0 and 1 पे ही वर्क करता है, या तो वो ऑन रहता है या तो ऑफ रहता है, दो ही कंडीशन होती हैं। तो वैसे ही आपका कंप्यूटर वर्क करता है, या तो वो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, तो ऑन को वो एज ए 1 एज्यूम करता है और ऑफ को 0 एज्यूम करता है। तो इसी ऑन ऑफ के से वो अपना एक कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, जो किसी के भी इक्विवेलेंट हो सकता है, वो किसी कैरेक्टर के भी इक्विवेलेंट हो सकता है, किसी डिजिट के भी इक्विवेलेंट हो सकता है। तो अब 0 and 1 2-bit इंफॉर्मेशन है, 0 1-bit है, 1 2-bit है, और हमेशा जो 2-bit इंफॉर्मेशन, इसको हम बाइनरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसका बेस 2 है। जैसे डेसिमल का बेस क्या होता है, 10, मतलब सारे नंबर डेसिमल के 0 to 9 सिर्फ 10 डिजिट से ही फॉर्म किए जाते हैं
जी।
तो अब जब हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, और प्रोसेसर में हम कह रहे हैं कि i7 जो प्रोसेसर है वो 64-bit प्रोसेसर है, तो इट्स मीन कि ये हो सकता है कि वो एक समय 64-bit इंफॉर्मेशन ले और उसको प्रोसेस कर सकता है। अगर आप 32-bit प्रोसेसर लेंगे तो आपको क्या डिफरेंस आएगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, और जब प्रोसेसिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी तो जो एक्सपेक्टेशन आपकी है कि आपका जो है, जैसे आपने कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम में आपको एक्सपेक्टेशन है कि मूवमेंट एक्सेलरेशन जो है उतनी तेज़ी से होना चाहिए, वो चीज़ उतना फास्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन उतने फास्ट एग्जीक्यूट होने चाहिए, बट वो एग्जीक्यूट हो नहीं रहे, तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपने सही प्रोसेसर नहीं लिया है। आपको जितना एट ए टाइम इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट होनी थी उतने के हिसाब से आपने प्रोसेसर सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये बेनिफिट होता है कि जब आपको बहुत हैवी सॉफ्टवेयर रन करने हो, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करना हो, डेवलपमेंट करना हो, तो आपका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूट होकर के कम टाइम में आपको एक डिज़ायरेबल रिजल्ट दे सके
जी।
तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आपके मदरबोर्ड पे। अब मदरबोर्ड पे ही आपके स्लॉट्स होते हैं रैम के, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में। जब भी आप कोई, आजकल जब भी हम बच्चों को देखते हैं तो वो नए गेम जो है परचेस करते हैं, जैसे NFS है, नीड फॉर स्पीड है, और भी बहुत सारे गेम्स हैं, तो उसमें पहले से प्रीरिक्विजिट मेंशन होता है कि आपका जो है 8GB रैम होना चाहिए और ये इतनी बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, तभी आप जो है उस गेम को रन कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब को माइंड में रख करके आप अपने रैम स्लॉट आप देखेंगे मोस्टली 2 होता है, एक आप जो है अपना 4GB से है, अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो 8GB रैम तक आपने जैसे बढ़ा लिया है, तो ये पूरी चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, मदरबोर्ड पे, और मदरबोर्ड पे ही पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है जिसे प्रोसेसिंग CPU कर रहा है, और उसको कहाँ भेज रहा है एग्जीक्यूट करने के बाद, रैम में, और रैम जो है इंफॉर्मेशन किसको सेव करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो हमने एक वर्ड यूज़ किया कि रैम जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और फिर हमने यूज़ किया कि आपका एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। मेन हमारा कंप्यूटर क्या है कि प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए, हमारे स्टार्टिंग से ये माइंड सेटअप था कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू इंफॉर्मेशन CPU में गया, CPU ने उसको प्रोसेस किया और डिस्प्ले कर दिया मॉनिटर पे। बट ये जो प्रोसेस का पार्ट है ये आपको कंबाइंड कर रहा है CPU और रैम और जो इन्फॉर्मेशन आपके सेकेंडरी मेमोरी में है। तो सेकेंडरी मेमोरी कैसे हो गई, सीपीयू आप बेस मान लीजिए, सीपीयू से पहले कौन कनेक्टेड है, रैम, इसलिए वो प्राइमरी मेमोरी है। और फिर रैम अपनी इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकता है, किसी पेन ड्राइव में सेव कर सकता है, किसी सीडी डीवीडी रोम में सेव कर सकता है, या रीड राइट जो भी आप डिस्क लेना चाहें उसमें भी सेव कर सकता है। तो रैम सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, जबकि हार्ड डिस्क क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को सेव करता है। और रैम में इन्फॉर्मेशन तभी तक रहती है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, मतलब अगर एक बार आपने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया और उसको आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो गेम में आप देखिए कि जब तक पावर उसको मिल रही है और आपका गेम चल रहा है, आपने गेम खेल रहे हैं, आपके बैकअप नहीं है, कोई यूपीएस नहीं है जिससे आपको कंप्यूटर को बैकअप दे सके, और सडनली आपकी लाइट चली जाती है, तो आप देखेंगे कि जब फिर आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना पड़ रहा है तो वो गेम जो है या तो पर्टिकुलर प्लेस पे सेव हो गया होगा, लेकिन वो रनिंग स्टेज में नहीं होगा। मान लीजिए आप NFS खेल रहे हैं, नीड फॉर स्पीड, और आपने जो है टू कार्स हैं जो रेस कर रही हैं, और एक लाइट चली गई, तो आप एक्सपेक्ट करें कि वो उसी जब आपका कंप्यूटर ऑन हो तो आपको दिखे कि कार जो है अभी भी रेस कर रही है, आपको बस एक्सेलरेशन बटन दबाना है ताकि आप आगे चले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको फिर से कंप्यूटर में जो है आपका गेम ऑन करना होता है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने सेव कर रखा है तो वो उस प्लेस से स्टार्ट होगा। तो सेव करने की मीनिंग क्या होती है कि जैसे जब आप गेम खेल रहे हैं तो वो सारा एग्जीक्यूशन रैम में हो रहा है, और जब भी वो गेम कहीं सेव होगा तो वो सारा कुछ सेव होता है सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो जब आप जैसे गेम कोई इंस्टॉल करते हैं तो उसकी सारी फाइल जो है आपके हार्ड डिस्क में रहती है, और जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें से रिक्वायर्ड फाइल जितनी एट ए टाइम हमें रिक्वायर्ड है उस गेम को स्टार्ट करने के लिए, वो रैम में आती है, और रैम जितनी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए सीपीयू जो है रैम से लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद रैम को देता है। रैम अगर आप सेव करेंगे तो रैम फिर जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे हार्ड डिस्क में वो इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। इसलिए हम रैम को हम कहते हैं ये प्राइमरी मेमोरी है और आपके हार्ड डिस्क और वो सेकेंडरी मेमोरी है। अभी हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमने बताया कि इनपुट है, आउटपुट डिवाइसेस है, और साथ में आपके एक सीपीयू केस है। तो सीपीयू केस में आपका मेमोरी यूनिट है जिसमें हमने बात की थी रैम और सेकेंडरी मेमोरी की, फिर आपके जो है प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर जो है आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसमें भी एक मेमोरी यूनिट होती है उसको हम देखेंगे। तो जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी आपके इनपुट आउटपुट जो इन्फॉर्मेशन है जो वो एक फ्लो से आ रही हैं उसको प्रॉपरली कंट्रोल करे, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, लॉजिक और कंपेरिजन हैं। तो जब ये प्रोसेसिंग कन्फर्म हो जाएगी तो भी क्या होगा, ये आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले होता है। तो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है कि आपको प्रोसेसर कितना फास्ट करेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितने बिट का प्रोसेसर है, उसमें जो है क्या ये मेमोरी यूनिट में कितनी है, जैसे हमने कहा 64 बिट और 32 बिट में कितना डिफरेंस है, प्लस अगर इन केस आपके पास हार्डवेयर एग्जिस्ट करता है, एक रोबस्ट हार्डवेयर है जिसमें आप कहें 64 बिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ऐसा इंस्टॉल कर रखा है जो 32 बिट का है, तो क्या होगा कि वो 32 बिट के हिसाब से फिर उसको वर्क करेगा, वो उसके कॉम्पिटिबल है, आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन 64 बिट प्रोसेसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजेस आप देखेंगे उतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं होगा जितना 64 बिट प्रोसेसर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर सकता है। तो पहला जो है फर्स्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कि वो क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन आपके सीपीयू को सेंड करती हैं और सीपीयू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो कौन कौन सी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका कीबोर्ड, फिर है आपके पास माउस, लाइट पेन भी हम यूज़ करते हैं एज ए इनपुट डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक स्कैनर्स, ये भी आपकी एज ए इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो स्कैनर क्या करता है, अगर आपने कभी यूज़ किया हो कि जो आपके पास हार्ड कॉपी रहती है, चाहे वो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, या फिर आप देखेंगे कि आजकल जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है फोटो आप स्कैन करके भेजिए, साइन स्कैन करके भेजिए, तब भी आपको जो है स्कैनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्कैनर क्या करता है कि जो आपकी फ़ोटो है, जो सिग्नेचर है, वो एज ए हार्ड कॉपी है, उसको स्कैन करता है इन्फॉर्मेशन को और कंप्यूटर में सेव करता है। तो ये भी आपका क्या होता है, एज अ इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन क्या है कंप्यूटर को दे रहे हो। फिर आता है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन अगर आप देखें, आपको मोबाइल भी टच स्क्रीन है। आजकल जो है मोबाइल पे कीपैड नहीं आते, वो डायरेक्टली टच स्क्रीन होते हैं, वो वर्चुअल कीज होती हैं जिसके थ्रू आप जो है इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। आपको मैसेज भी करना है तो आपके पास वर्चुअल की जो है डिस्प्ले होंगी, और उसी पे आप जो है ए बी सी डी उस पे जो भी है आप सेलेक्ट करके अपनी डिजायर्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है टाइप करेंगे और सेंड करते हैं। तो टच स्क्रीन भी आपके जो है इनपुट डिवाइसेस में आता है। और क्या आ सकती हैं इनपुट डिवाइसेस में, जैसे आप सॉन्ग सुनने के लिए अगर आप यूज़ करते हैं ईयरफोन, तो कई ऐसे ईयरफोन आप देखेंगे जिसके साथ जो है इनपुट और आउटपुट दोनों रहता है। मतलब आप जब चैट करते हैं तो वॉइस चैट आपकी इन्फॉर्मेशन जो है सेकेंड पर्सन तक भी सेंड की जा सकती है, तो वो भी आपको जो है एक तरह से इनपुट वर्क करता है। फिर ट्रैक बॉल्स हैं, वो भी आपके जो है इनपुट डिवाइसेस की तरह वर्क करते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को सेंड करती हैं, और कंप्यूटर जो है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और फिर जिसको रिक्वायर्ड है, जिस आउटपुट डिवाइस को रिक्वायर्ड है उसको वो भेजता है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस पे चली जाती हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको अपना फोटो स्कैन करना हुआ, स्कैन करने के बाद आप चाहते हैं कि उसका साइज चेंज करके फिर प्रिंट आउट लें, तो क्या हुआ कि आपने स्कैनर के थ्रू स्कैन तो कर लिया, तो वो क्या होगा एक इनपुट प्रोसेस हो गया, और फिर वो स्कैन करने के बाद सॉफ्ट कॉपी में सीपीयू में चला गया। अब उसको प्रोसेसिंग होना है, और प्रोसेसिंग कैसे होना है, जो आप हो सकता है किसी टूल के थ्रू उसको प्रोसेस करें, तो आपने क्या किया किसी टूल के थ्रू उसकी साइज इंक्रीज कर दी, और इंक्रीज करने के बाद फिर आपको किसको उसको हार्ड कॉपी में लेना है डिफरेंट साइज में, तो अब आपको क्या रिक्वायर्ड होगा एक आउटपुट डिवाइस, और वो आउटपुट डिवाइस क्या हो सकता है प्रिंटर हो सकता है। तो प्रिंटर के थ्रू आप जो है अपने डिजायर्ड साइज में अपनी फोटो आउटपुट में ले सकते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइसेस होंगी। तो आउटपुट डिवाइसेस में मोस्टली हमने सबसे ज़्यादा देखते हैं मॉनिटर, फिर प्रिंटर भी यूज़ होता है, प्लॉटर और स्पीकर। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइसेस है, जो आप अपने सॉन्ग सुनने या कभी आप मूवी देखते हैं तो उसमें जो स्पीकर लगाते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर्स कैसे हो सकते हैं, मॉनिटर पहले जो आते थे वो CRT मॉनिटर्स रहते थे, काफ़ी बड़े और हैवी और बल्की हुआ करते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी टफ होता था, लेकिन स्टार्टिंग में CRT मॉनिटर यूज़ होते थे। इवन TV भी CRT मेथड पे भी वर्क करता था। तो अब जो है कुछ LCD मॉनिटर हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जो इन कंपेयर टू CRT मॉनिटर लेस इनका वेट होता है, उन्हें ईजिली आप जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जब हम प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर जो है कई टाइप्स के प्रिंटर आपके आते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क ये प्रिंटर हम अपने यहाँ यूज़ कर लेते हैं। जैसे आजकल आप देखें लेज़र प्रिंटर भी काफ़ी सस्ते आ रहे हैं, और आपके पास अगर होम कंप्यूटर है, घर पे आपने कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करते हैं, जिसमें इनबिल्ट स्कैनर और प्रिंटर साथ में आते हैं, और आप जो है स्कैनिंग भी कर सकते हैं, और जब भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि उसको एक हार्ड कॉपी में फिर से लेना है तो आप प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्पीकर को हमने ऐसे बता ही दिया कि क्या है आउटपुट डिवाइसेस है। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस आपके प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट होते हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट उनको प्रोसेस करके आउटपुट को सेंड करता है, और फिर आउटपुट डिवाइसेस उसको डिस्प्ले करती हैं या फिर डिजायर्ड फॉर्म में आपको प्रेजेंट करती हैं। जैसे प्रिंटर आपको क्या कहते हैं हार्ड कॉपी फॉर्म में प्रेजेंट करता है, मॉनिटर आपको एक डिस्प्ले फॉर्म में प्रेजेंट करता है आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम जो है सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि एक बेयर कंप्यूटर भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन विदाउट सॉफ्टवेयर आप उससे इंटरेक्ट नहीं हो सकते। और उस समय आपको कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, वो थी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। जब भी हम कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो हमारे माइंड में कुछ और आता है कि सॉफ्टवेयर में जैसे PPT चलाना है, या MS Word की जो ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, या गेम है, वो भी एक सॉफ्टवेयर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या हो सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सॉफ्टवेयर दोनों ही हैं, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, वो डायरेक्टली हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और एक यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो सके. इन द एब्सेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र कांट इंटरेक्ट विद हार्डवेयर. लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या यूज़र हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाएगा? तो इसका आंसर है यस. अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र कैन इंटरेक्ट विद हार्डवेयर. जब हम हार्डवेयर की बात आते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्या आना चाहिए, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, इवन क्या कहते हैं पहले स्टार्टिंग में हम कीबोर्ड और माउस के डिवाइस ड्राइवर भी आते थे, या फिर ग्राफिक्स के डिवाइस ड्राइवर आते हैं, ऑडियो ड्राइवर्स आया करते थे कि बिना ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल किए आप जो है ऑडियो वॉइस फैसिलिटी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होगी. तो वो सारे किसमें आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, दूसरा क्या होगा, यूटिलिटीज़ होते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने एग्जांपल देखा है कि अभी लेटेस्ट विंडोज़ का विंडोज़ 10 है, उससे पहले विंडोज़ 8 था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऐसे लिनक्स के भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं लाइक उबुंटू, उबुंटू के बहुत सारे वर्जनस हैं, रेड हैट है, और भी क्या कहते हैं सेंटोरा आप दे सकते हैं. और ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र्स रिक्वायरमेंट उसको सेलेक्ट किया जा सकता है. जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में अगर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली किसी प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर केवल विंडोज़ पे ही चलता है तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस करें. अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप उबुंटू के फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करें और उसमें आपको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने होंगे. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो आपके एक्स्ट्रा हार्डवेयर को कनेक्ट करने पर उसको यूज़ करने की फैसिलिटी यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, वो यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर एज अ नोन होते हैं. जैसे आपने प्रिंटर कनेक्ट किया, उसका डिवाइस ड्राइवर आपने इंस्टॉल करना हो, तो वो भी आपके यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर में आएंगे. फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स होते हैं एमएस वर्ड. जैसे आप देखिए कि अगर आपका कंप्यूटर तब भी वर्क करता है जब आप उसमें एमएस वर्ड इंस्टॉल ना करें, मतलब अगर एमएस वर्ड नहीं है तो कंप्यूटर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है. हो सकता है कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए ना यूज़ हो बट किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो यूज़ ही नहीं होगा. तो इस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जनरलाइज्ड पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो जनरलाइज्ड पैकेज में जो है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड जैसे हमने बता दिया, ओपन ऑफिस भी आते हैं. एक चीज़ और डिफरेंस है कि जो एमएस ऑफिस है और ओपन ऑफिस है इसमें वैसे ही डिफरेंस है जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था. विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम आप लीजिए, जैसे विंडोज़ आपने 10 की हमने बात की और उबुंटू की हमने बात की, तो उबुंटू आपको फ्रीली मिल रहा है, अवेलेबल है, दैट इज़ ओपन सोर्स. वैसे ही ओपन ऑफिस भी फ्रीली अवेलेबल है, एमएस ऑफिस भी आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन ओपन ऑफिस आप लीजिए फ्रीली अवेलेबल है एंड आप लीगली उसको यूज़ भी कर सकते हैं. जैसे एमएस ऑफिस कई बार कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जो कि इलीगल है कि लोग पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए. तो उसकी जगह आप एमएस ऑफिस आप की जगह आप ओपन ऑफिस यूज़ कीजिए, दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर उबुंटू एंड विंडोज़. स्प्रेडशीट के अगर हम देखें, डेटा एनालिसिस अगर आपको करनी है तो आप एक्सेल यूज़ करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपके किस में आएंगे, जनरलाइज पैकेज में आएंगे. प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट है या ओपन ऑफिस में इम्प्रेस है, तो वो भी आपके किस में, जनरलाइज पैकेज सॉफ्टवेयर्स में है. डेटाबेस आजकल सबसे जगह यूज़ हो रहा है, जब भी हम बात करते हैं किसी फॉर्म को भरने की तो उसमें भी हमारे माइंड में ये रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो सेव हो रही है. जैसे गवर्नमेंट ने किसी रिक्रूटमेंट करनी है और उसने कोई फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म जो है वेबसाइट पे डाल रखा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो आप वहाँ एंटर करते हैं वो कहीं ना कहीं सेव होती है. और कई बार क्या होता है कि आपकी दिए गए इन्फॉर्मेशन के बेस पे गवर्नमेंट स्क्रूटनी करती है, मतलब शॉर्टलिस्ट करती है. तो शॉर्टलिस्ट कैसे होगी, जब आपके पास एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा तब उसको आप जो है उस पर क्वेरी लगा सकते हैं और जो एलिजिबल कैंडिडेट हों उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं. तो डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस में आएंगे, जनरलाइज पैकेज में आएंगे. और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक एमएस एक्सेस है, एमएस एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है सबसे जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होता है. ग्राफिक टूल्स भी जनरलाइज पैकेज में ही आते हैं. ग्राफिक टूल्स आप जो यूज़ करते हैं मोस्टली पेंट है, एडोब फोटोशॉप है. तो दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बट दीज आर द जनरलाइज पैकेजेस और ये सबके द्वारा लगभग यूज किए जाते हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है कस्टमाइज पैकेजेस। तो कस्टमाइज पैकेजेस में क्या होता है कि हो सकता है कोई एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो और उसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो जो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो एक ERP डेवलप करना चाहे जिसमें अटेंडेंस सिस्टम केवल एग्जिस्ट करे। अटेंडेंस सिस्टम में क्या है कि केवल वो उस एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई की अटेंडेंस को मैनेज करे कि कब उनका इन है कब उनका आउट है और उसी बेस पे वो सैलरी जनरेट करे। तो ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, कस्टमाइज पैकेज सॉफ्टवेयर। या आप अपने घर के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहते हैं कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं अपने कंप्यूटर पे जिससे आपको पता हो कि आप सेलेक्ट कर सकें कि ये चीज़ें हम डॉक्यूमेंट मैं देख सकूं बाकी डॉक्यूमेंट कोई और देख सके, तो उसके लिए भी आप एक कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या किसी से बनवा सकते हैं। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हमने देख लिया लेकिन सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको आनी चाहिए लैंग्वेजेस। जैसे हम नॉर्मल हम लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, जर्मन एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। मतलब दो पर्सन अगर आप देखें, दो आदमी हैं, अगर दोनों सेम लैंग्वेज जानते हैं तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो लैंग्वेज सेम नहीं जानेंगे तो दे नीड अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के थ्रू ही वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। और ट्रांसलेटर क्या करेगा, मान लीजिए एक पर्सन है जो जर्मन जानता है और एक पर्सन है जो हिंदी जानता है, तो अगर उन दोनों से बात करनी है तो वो एक ट्रांसलेटर दैट इज इंटरमीडिएट वर्क करेगा। तो वो क्या करेगा, हिंदी को जर्मन में कन्वर्ट करेगा और जर्मन पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन देगा और जर्मन को वो कन्वर्ट करके हिंदी में देगा और हिंदी पर्सन को इन्फॉर्मेशन देगा। तो लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज में हमारे माइंड में आता है ग्रामर, कि लैंग्वेज जो भी होती है दैट शुड बी ऑन द पर्टिकुलर ग्रामर। उसमें कुछ रूल्स होने चाहिए, उस रूल्स पे आपके सेंटेंस बनना चाहिए, डिक्शनरी होनी चाहिए। जैसे हिंदी में एक सेट ऑफ वर्ड्स की डिक्शनरी है, इंग्लिश में अपना एक सेट ऑफ वर्ड्स की डिक्शनरी है और अदर लैंग्वेजेस में भी अपनी डिक्शनरी है। तो वैसे कंप्यूटर में जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे तो उनकी भी एक रूल्स होते हैं जिस और सिंटैक्स होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए और उनकी भी अपनी एक डिक्शनरी होती है। तो लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और कहीं कहीं मिडिल लेवल लैंग्वेज वर्ड यूज़ हो जाता है। तो मिडिल लैंग्वेज क्या करते हैं, वो लो लेवल और हाई लेवल दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो उसको हम अभी एग्जांपल देखेंगे। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे कंप्यूटर को हमें पता है कि 10 के फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन लेती है, अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटर को 10 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देंगे तो उसको क्या होगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली उसको यूज कर सकता है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में आपकी मशीन लैंग्वेज आती है जो 01 फॉर्म में होती है। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेजेस में आती है जिसको निमोनिक सिंबल्स यूज़ करते हैं, कोड्स यूज़ करते हैं, जो नियर अबाउट आपके मशीन लेवल लैंग्वेज की होती है जिसको ईजली कंप्यूटर इंटरप्रेट कर सकता है। फिर आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो ह्यूमन के ज़्यादा इंटरप्रेटेबल रहती हैं। जैसे इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो ह्यूमन अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन अगर एक एक पैराग्राफ है उसको कम्प्लीटली 01 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होंगी, वो नियर टू ह्यूमन रहती हैं, यूजर्स रहती हैं, और लो लेवल लैंग्वेज किसके होती है, नियर कंप्यूटर के ज़्यादा नियरर होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में जैसे सी प्रोग्रामिंग है वो कई बार असेंबली के साथ वर्क कर लेता है, तो हम उसको कई बार कह देते हैं कि वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, बट एज अ जैसे वो फेमस है तो वो एज अ हाई लेवल कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि उसमें सारे वर्डिंग जो है इंग्लिश में रखी जाती है। जैसे इंटीजर आपको डिक्लेयर करना होता है तो INT आप यूज़ करते हैं सी में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बेसिक कोबॉल, फोर्ट्रॉन, C++, जावा, ये सारी कौन सी लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज हमने कहा कि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती हैं, यूज़र्स ज़्यादा ईजिली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम कोई प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो कंप्यूटर उसको कैसे समझ सकेगा, तो उसके लिए क्या होगा, बीच में एक हमें इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है दैट इज़ कंपाइलर। वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है ताकि उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके लिए कंपाइलर, असेंबलर, इसी तरीके से आपका कंपाइलर और असेंबलर दो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, और इसी पे आप जो है वर्ड इंस्टॉल करके वर्ड को आप उसके जितने भी टैब्स हैं और हेल्प मैनुअल के साथ वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर पे।